نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لا تحزن، ڈونٹ بی سیڈ، غم نہ کرو اس موضوع پہ آج ڈے نمبر 25 کا آغاز کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے. آج قرآن پاک کی جو آیت ہمارے سامنے ہے وہ ہے الانبیاء 103، 103 سورۃ الانبیاء. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحزنہم الفزع الاکبر وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور کہا جائے گا هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان کو اس دن کی بڑی گھبراہٹ کا غم لاحق نہ ہوگا، اور فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے، کہیں گے یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا تھا. جب کبھی بھی میں نے اس آیت کو پڑھا، جب بھی اس پہ نظر گئی، ذہن میں ایسے آتا ہے کہ ایک نئی دلہن ہے جس کو بڑے ارمانوں اور بڑے چاؤں کے ساتھ بیاہنے گئے، اور اب وہ دلہن دروازے پہ ہے اور لوگ ویلکم کرتے ہوئے دکھتے ہیں، اور اس کے لیے پھولوں کے بکے ہیں، پھولوں کی پتیاں ہیں. تتلقاہم الملائکہ، کیا خوبصورت دن ہوگا مومن کی رخصتی کا. دنیا میں لفظ رخصتی کے ساتھ ہی دلہن کی رخصتی ذہن میں آتی ہے. یہاں ایک ایسی رخصتی ہے کہ جو بس پھر آگے ہی آگے ہے. یہاں بھی بہت سارے لوگ منتظر ہوتے ہیں ایک دلہن کے آنے کے، اور وہاں رب کائنات اور اس کے بھیجے ہوئے لوگ مومن کی روح کو لینے کے لیے منتظر ہوتے ہیں. تو جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت اس کو کوئی غم نہیں ہوتا. یہ لکھ لیجئے فزع الاکبر، گھبراہٹ، قیامت، موت کی گھڑیاں. کیونکہ جب من مات فقد قامت قیامتہ، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس غم سے بے غم ہونے کی بات کی ہے وہ ہے موت اور قیامت. انفرادی طور پر تو ایک بندے کی اپنی موت، اور ایک اجتماعی طور پہ دیکھے تو دنیا کی موت یعنی قیامت ہے. کیا پتہ چلا کہ ایک مومن کو سچی بات ہے کہ غم ہوتا ہے. موت کا غم فطری غم ہے، ہم مریں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. ایک چھوٹا سا آپریشن بھی ہونا ہو تو انسان خوف زدہ ہوتا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے. لیکن وہ موت جس میں جسم کے ایک ایک روئے میں سے جان کھینچنی ہے، اور کئی سالوں کی دوستی تھی اور آج ہر حصہ جدا ہو رہا ہے، جب جسم اور روح الگ ہوں گے تو غم تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اس وقت بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی. مومن کی موت بڑی پرسکون ہوتی ہے. اس کو اس وقت ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنی اصل منزل پہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی جو علامتیں ہیں، جو نزاع کی گھڑیوں میں انسان کے پرتاری ہوتی ہیں، تو اس میں ایک وہ ہے کہ جس میں مومن کو بالکل فکر نہیں ہوتی، غم نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، اور وہ محسوس کرتا ہے اس چیز کو کہ میں اپنے آپ کو کیسے الگ سے الگ لے جاؤں. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس طریقے کے ساتھ رکھا کہ جو اللہ کی مرضی کے ساتھ دنیا میں جب جیتا ہے تو اس کو تو پھر بالکل بھی غم نہیں ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جھٹکے لگیں گے، اور اس دن ایک کہہ لیجئے کہ سور جس کا نام ہی جزا و فضا کے ساتھ ہے، یعنی ایک پہلے سور پہ تو سب گھبرا جائیں گے، پھر دوبارہ فوت ہوں گے، مریں گے، تو اس قیامت کے سور اور قیامت کے جھٹکوں پہ غم نہیں ہوگا. تو اگر مجھے کوئی کہتے کہ تمہاری موت بڑی اچھی ہوگی، اور مجھے کوئی کہہ دے کہ جب حشر کے دن قبروں سے نکلیں گے لوگ، تم اپنی قبر سے بڑی مطمئن گزرو گی، یقین کیجئے، سچ کہوں گی کہ مجھے لگے گا اس کے بعد اب کوئی غم ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ غم جس نے صحابہ کرام اور صحابیات اور ہمارے اسلاف کو پریشان رکھا ہوتا تھا، کہ ان کو ذاتی زندگی کے غم، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں لگتی نہیں تھیں، سوجتی نہیں تھیں، ہر وقت یہی سوچتے تھے اس وقت کیا ہوگا. ایک روایت بڑی پیاری آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں بری بات کر رہا ہے، یعنی آپ کی برائی بیان کر رہا ہے. ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا رسپانس دیتے، لیکن ابو ہریرہ کا جواب بڑا خوبصورت ہے. کہنے لگے بھائی، मैं तो हर वक्त तीन चीज़ों के गम में मुब्तला हूँ। उनमें से एक क्या है कि आज तो बड़े अच्छे काम कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी की हदीस और उसके साथ ताल्लुक़ है, पता नहीं मौत कैसे आएगी, उस वक्त क्या कर रहा हूँगा। पहला गम तो ये लगा हुआ है कि मौत कैसी होगी, यानी सुए खात्मा होगा या हुस्ने खात्मा होगा। दूसरी बात यह है कि कब्रों से जब लोग निकलेंगे तो उस वक़्त नामे अमाल या दाएँ या बाएँ में मिलेगा, मुझे पता नहीं कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और पुल सरात से सही गुजर जाऊंगा कि नहीं। और अगर इन तीन मकामात पे मैं अमन से गुजर गया तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं कि कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे। ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे असल गम ही ये था। और कहा अगर मैं इन तीन में से किसी एक जगह रोक लिया गया तो दुनिया के हर इंसान को हक है कि मुझे अबू हुरैरा को बुरा कहे, कि अबू हुरैरा कितना बदबخت था, उसकी मौत कितनी बुरी हुई, और कितना बदबخت था कि उसका नामे अमाल उसको बाएं हाथ में मिला, और सो ऑन। तो हम सब के लिए शायद में फिर यही पैगाम है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा वेलकम बड़ा प्यारा हो, फरोहम व रैहानुन हो, तो फिर हमें कोशिश करनी है इस बात की कि हम अपने आप को दुनिया में ही इसके लिए तैयार कर लें। आप जब किसी चीज़ की तैयारी कर लेते हैं ना, तो आपका गम इंतज़ार में बदल जाता है। मेहमानों के आने का गम है, ये ना हो वो ना, भी ये भी रहता है वो भी रहता है। तैयारी करके बैठ जाइए तो आपको इंतज़ार लग जाता है, आए नहीं, कब आएंगे, खाना ठंडा हो रहा है। तो मोमिन का मामला पोस्टपोन नहीं होता, वो तैयारी करके पोटला बांध के बैठा होता है कि जब भी गाड़ी आएगी बैठ के चला जाऊंगा। अल्लाह ताला हमें ये गम लगा दे। पिछले नशिस्त में जो हमने टॉपिक किए थे उनका खुलासा, नाराज़गी शैतान की शिकारगाह है, यानी जब हम अल्लाह से नाराज़ होते हैं तो शैतान के हाथों में शिकार हो जाते हैं, फिर वो हमें और भी गलत वसवसे डालता है। फिर अल्लाह ताला की रज़ामंदी से इंसान के नफ्स की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। मुराद ये कि तकदीर पे राज़ी रहिए, दोस्तों की गलतियों से सरफे नज़र करना चाहिए, ये नहीं कि हर छोटी छोटी बात पे मूड बनाकर बैठ के मैं ऐसा है तुमने ये किया वो किया। तो बहुत गिले शिकवे दोस्तों में और सहेलियों में नहीं होने चाहिए। सेहत और फरागत को अल्लाह ताला की इताअत के लिए गनीमत समझिए, यानी आज सेहत है, पता नहीं कल के आने वाला दिन हो, कल के दिन में क्या लिखा हो। आज फारिग हैं, कल फिर मसरूफ़ किसी चीज़ में हो जाएं तो बेहतर है कि एग्तनिम खमसन कबला खमसन। फिर अल्लाह ताला ईमान वालों का दोस्त है, इसलिए दोस्ती ईमान वालों से ही रखनी है। आज सुबह में हमारा आयत बायत में सूरत मायदा का लेसन भी आलमोस्ट पूरा इसी मौजू पे था कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तो अल्लाह ताला की विलायत पाना ही ज़िंदगी की खूबसूरती है। इसमें एक जुमला बोला था, आपके लिए भी बोल देती हूँ, कि जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है ये भी बड़ी बात है, लेकिन जब अल्लाह बंदे से मोहब्बत करे ये सबसे बड़ी बात है। पता कैसे चलता है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत कर रहा है? तो उसका जवाब ये दिया गया था कि जब बंदा अल्लाह की मोहब्बतों में और उसके हिसार में होता है ना, तो वो एनर्जी महसूस करता है, उसके अंदर एक ताकत होती है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे वो मुजाहिद बन ही जाता है। फिर उसको अल्लाह के रास्ते की जद्दोजहद अच्छी लगती है, फिर वो सुस्त नहीं होता, वो बेकार नहीं होता। बस वह लोग कहते हैं कि क्या चीज़ है जो मोटिवेशन देती है, हमारा तो मोटिवेशन लूज़ हो जाता है, हम थोड़ा सा कुछ कर लें तो उसके बाद हम ठंडे होते हैं, कोई कहता है तो बहुत मोटिवेटेड हैं, कोई ना कहे तो नहीं होते। तो उसका जवाब क्या है कि जब अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है तो उसकी दुनिया में निशानी ये है कि आप अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करते थकते नहीं, आपकी ज़िंदगी का मिशन, आपका हम और गम ये बनता है। फिर आप सिर्फ पढ़ते बराए पढ़ते नहीं, आप पढ़ने को एक मिशन बनाते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर दुनिया में एक एक दिन अपना इस तरह से प्लान करते हैं कि हमने अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करनी है, और अल्लाह ताला मुझे और आपको इसके लिए चुन ले। फिर इसी तरह अगला टॉपिक था कामयाबी चाहने वालों के लिए निशाने रहा, बड़ा मर्तबा भी इब्तला है, यानी अगर दुनिया में किसी को बहुत बड़ा मर्तबा मिल भी जाता है तो ये भी एक आजमाइश होती है। बाकी रहने वाले ख़जाने यानी बाकियातु सालेहात, और इसी तरह हमालिया पहाड़ जितनी हिम्मत और हौसला चाहिए होता है बाज़ औक़ात ज़िंदगी के गमों और दुखों तकलीफ़ों को सहारने का, उनको बर्दाश्त करने का। फिर इसी तरह हमने बड़े लोगों की सवाने का मुताला किया था कि वो लोग जिनकी ज़िंदगियां इतनी खूबसूरत गुजरी जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत कुछ करने के मौके दिए तो वो क्या लोग थे, और उनको पढ़ के तो सिर्फ यही आता है कि शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी, अपने ऊपर रोना आता है कभी कभी। फिर इसी तरह हज़रत इब्राहिम का ये कॉल था कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से शिफाएं दे, और जितने लोग इस वक्त कोरोना या उससे रेलेवेंट या किसी भी तकलीफ़ में हैं उनको सेहत और आफ़ियत अता फरमाए, और जितने साथी डिप्रेशन की वजह से परेशान हैं अल्लाह ताला उनको भी सुकून और इत्मीनान दे। फिर एहतियात बरतिए, समझने की बात क्या है और अजीमत के साथ इकदाम करो, यानी जो काम कीजिए पूरे शरह सदर के साथ कीजिए, क्योंकि जब आप खुद ढीले ढाले होते हैं तो आपको फिर उन चीज़ों में कभी भी शरह सदर नहीं मिलता। फिर इसी तरह हमने टॉपिक देखा था कि दुनिया की ज़िंदगी सब कुछ नहीं, ये वो की पॉइंट है कि जिसके बाद वाकई ज़िंदगी के गम अधूरे हो जाते हैं, बिल्कुल गम गम नहीं लगता, क्या हुआ, कितने दिनों की बात है, हो जाएगा, जब अल्लाह करेगा, जब अल्लाह देगा, जो अल्लाह चाहेगा, यानी ऐसे लगता है कि बंदा एक वो रुई की गुड़िया बन जाता है जिसको इधर मोड़ो उधर मोड़ो, जिधर भी उसको रखेंगे उसको ऐसे महसूस होगा कि जैसे मैं अपने रब की रज़ा में जी रहा हूँ। फिर इसी तरह एक और टॉपिक था, ना कहीं जहाँ में अमां मिली, यानी बंदे को अगर अमान मिल सकती है, उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है, तो सिर्फ अल्लाह के दामने रहमत में मिल सकती है। और उसके बाद हमने देखा था कि आपका मामला अरहमुर राहमीन के साथ है, तो जब वो इतना रहम करने वाला है तो फिर मैं क्यों मायूस हूँ, फिर मेरी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें क्यों हमें इतने चुभने लग जाते हैं कि बस जब हम सोच लेते हैं कि मेरे जैसा कौन है, मैं तो ऐसी हूँ, मेरे साथ तो ऐसा मामला है। और आज हम जिस टॉपिक से शुरू करेंगे वो है नेक फॉल लीजिए। फल का लफ्ज़ हमारे कल्चर में बड़ा ही मारूफ है, कहीं तोते की फल है और कहीं चिड़िया कौवों की है, लेकिन नेक फल क्या है? हुस्ने ज़न। इब्ने अबी दुनिया की किताब है, हुस्ने ज़न बिल्ला, यानी अल्लाह से अच्छा गुमान रखना। इसमें आयात और अहादीस के तकरीबन 150 यानी 150 रेफरेंसेस पेश किए गए हैं, दलाइल है, जिनका फ़ायदा क्या है कि नेक फॉल लीजिए, यास और कनूत को छोड़ दीजिए यानी मायूसियाँ छोड़ दीजिए, हमेशा हुस्ने ज़न रखिए, हुस्ने अमल इख्तियार कीजिए, क्योंकि वादे की नसूस और वईद की नसूस से ज़्यादा, यानी अल्लाह ताला ने जितनी हमें वादे वाली बातें कुरान में बताई है ना, उतनी वईद की नहीं बताई, समझिएगा। वादा होता है अच्छी चीज़ की उम्मीद दिलाना, जन्नत का वादा है जबकि जहन्नम की वईद है, तो कुरान पाक अगर आप खुल कर देखें ना तो जन्नत की बातें, जन्नत वाली आयात ज़्यादा है जहन्नम वाली आयात की निस्बत। इस तरह रहमत की दलीलें तहदीद की दलीलों से ज़्यादा हैं, यानी अल्लाह की रहमत होगी इसका तذکرہ ज़्यादा है, और अल्लाह ताला की तरफ से कह लीजिए कि ज़हमत होगी या उसके अंदर कुछ हदबंदी है वो कम है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने हर चीज़ की मुनासिब कदरों कीमत मुतय्यन की है, तो फिर आपको मुझे क्या होना है, हुस्ने ज़न रखना है। याद रखिएगा मालिक बहुत प्यारा है, इतने प्यारे मालिक के होते हुए मैं क्यों गम करूं, मैं क्यों फ़िक्र करूं, बच्चा अपनी माँ बाप के होते हुए क्या गम करता है कि बिजली का बिल कहाँ से आएगा, मेरी फीस कहाँ से आएगी, नहीं उसको तो छोटे छोटे गम होते हैं, पेंसिल टूट गई, शॉर्पनर गुम गया, तो बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो क्या सीखा हमने, चंद मशवरे मिले हमें, तो मुफीद मशवरे क्या हैं? पहली बात है नेक फाल लीजिए, फिर मायूसी छोड़िए, हमेशा हुस्ने ज़न रखिए, नेक आमाल कीजिए, खुद को मसरूफ़ रखिए और अल्लाह ताला का जिक्र कीजिए। देखिए क्या गैर महसूस तरीके से हमारे गम दूर नहीं हो रहे, ऐसे लगता है कि लोगों को खुश रहना भूल गया, खुशी का नाम निशान नहीं दिखता। और अगर खुशियां हैं तो उन खुशियों को आप देखिए कि सही तरह से वो एंजॉय नहीं कर सकते, खुशी वाले दिन भी रस्मों रिवाजों में ऐसे खोए कि खुशी भी ना रही, याद ही नहीं है क्या था, कैसे था, क्यों था। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए, खुशियों में जिए, क्योंकि ये खुशियां ही हैं जो ज़िंदगी भर आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा में रखेंगी। और याद रखिए जिसको नहीं खुश होना ना वो कभी भी नहीं होगा, उसके पास ज़िंदगी का कोई मामला, कोई ऐसा रवैया, कोई ऐसी चीज़ जो उसको खुश करे वो नहीं आएगी। जिनको नहीं रहना वो मोहल्लात में भी खुश नहीं, और जिनको खुश रहना है वो कोठरियों में और छोटी छोटी जगहों पे भी बहुत खुश होंगे। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें खुश रहने वाले लोगों में करे। और ये अल्लाह ताला का जो हुक्म हम कुरान पाक में पढ़ते हैं यूसुफ 87, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक हकीकत यह है कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होते मगर वही लोग जो मुनकिर हैं। तो अल्लाह ताला हमें मायूसियों से बचाए। नेक्स्ट टॉपिक लीजिए, जिंदगी धूप छांव है, तिल कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास। तो ज़िंदगी में अगर गमों की धूप है तो कल खुशियों की छांव भी आएगी। आज अगर बीमारियां हैं तो कल सेहत भी आएगी। आज आप तन्हा हैं, फिर आप महफिलों में भी होंगे। आपकी तन्हाई को शहनाई में अल्लाह बदलेगा। और अगर आप ज़िंदगी की कदूरतों से उकता चुके हैं तो मत उकताइए। इसके अलावा ज़िंदगी में है ही क्या? मुसीबत और तकलीफ़ दुनिया की ज़िंदगी की असल हैं, खुशी यहाँ आरजी है। ये नोट कीजिए, अगर आप यहाँ आज खुश हैं ना तो ये असल में टेम्परेरी फेज़ था, असल चीज़ तकलीफ़ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसान को दुनिया में पैदा किया फ़ी कबद, मुशक्क़तों में। बच्चा दुनिया में मुशक्क़त के साथ आता है। कभी बच्चा दरख्त में उगता तो पकड़ते और उतार लेते, लेकिन तकलीफ़ से आना, अपने लिए माँ के लिए तकलीफ़ का ज़रिया बनना, ये एहसास दिलाया जा रहा है कि ज़िंदगी में असल गम है। फरहत और सुरूर यहाँ एक नादार चीज़ है, वो अच्छी तो लगती हैं लेकिन अल्लाह को अपने नेक बंदों के लिए दुनिया का मुस्तकर बनाना पसंद नहीं। अगर दुनिया इम्तिहान का ना होती तो यहाँ बीमारियाँ और कदूरतें ना होती। कदूरतें तो आप समझते ही हैं ना, जो भी गंदगियाँ, मैलापन, कदूरत कहते हैं मैलेपन को, यानी दिलों में, इंसानों में, रिश्तों में, नातों में ऊंच नीच होती ही रहती है। फिर ये ना होती, यहाँ भी और सुलह को रहना दुश्वार ना होता। आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जाने तक तकलीफ़ें उठाईं, नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम झुटलाती और ठट्ठा करती रही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, बेटे को ज़िबह करना पड़ा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहे हत्ता कि बीनाई चली गई। कोई महसूस कर सकता है एक बाप के दर्द को? मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन का जुल्म बर्दाश्त करना पड़ा, इनकी कौम ने ईज़ा पहुंचाई। ईसा अलैहिस्सलाम ने गुर्बत और उसरत की ज़िंदगी गुजारी, और सबसे बढ़ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फ़क्र का सामना रहा। महबूब चचा हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के कत्ल पर और अपनी कौम की अज़ियतों पर आपने सब्र किया। आप देखिए, इसके अलावा भी जम्बिया कराम थे जो सालेहीन थे, उन्होंने अज़ियतें उठाई। बड़ा तवील तस्करा है इनका। तो दुनिया की लज्जत में मोमिन का हक बहुत कम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व रौदतुल काफिर। दुनिया में सालेहीन को कैदो बंद किया जाता है, बाअमल उलमा, कुब्बार उलमा या कुब्बार औलिया कराम, बड़े बड़े लोग, नेक, अल्लाह के वली और सालेहीन की ज़िंदगियां दोबर कर दी जाती थी, अजीरन कर दी जाती थी। किसी ने सच कहा कि दुनिया है सुख से खाली, दुख चार सू भरा है, गम के सिवा यहाँ पर सोचो तो क्या धरा है। तो ज़रा सा सोचिए, ज़िंदगी की धूप छाँव में खुश रहिए। आप देखिए, थोड़ी देर धूप में चलेंगे तो गर्मी लगेगी, फिर छाँव में आ जाएंगे, छाँव में रहेंगे, और सर्दियों के दिन है तो सर्दी लगेगी तो फिर धूप में आएंगे। कई लोग सर्दियों की दोपहरों में यही कुछ करते हैं, कभी चारपाई धूप में करते हैं, कभी छाँव में करते हैं। तो फिर कहिए कि ज़िंदगी धूप छाँव, आज गम है तो कल खुशी, आज बीमारी तो कल सेहत, आज फ़क्र और फाका है तो अल्लाह कल गनी कर देगा, आज मुसीबत है तो कल आसानी होगी, आज दुख है तो कल सुख मिलेगा। मोमिन हमेशा इस एहसास के साथ जीता, इसी के साथ जीने के अंदर इंसान की ज़िंदगी में खुशी और राहत आएगी। और इसके बरक्स आप देखिए, जो लोग सिर्फ दुनिया में खुशियों के मतलाशी होते हैं उनको नहीं मिलती, नहीं मिलेगी, अल्लाह के हुक्म से मिलती है। अल्लाह चाहता है तो कोई चीज़ मिलती है, और अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगी। लाख कोशिशें कर लीजिए, लाख मामलात को बेहतर करने में, ये अच्छा हो जाए, घर बड़ा कर लें, इससे उससे, दिस दैट, ऐसा वैसा, लेकिन एक वक्त आएगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एक दिन ऐसा आने वाला है, आपकी मेरी ज़िंदगी का, कि जिसमें आप महसूस करेंगे इस बात को कि आपका मालिक आपसे क्या चाहता है। तो लिहाजा ज़िंदगी में दुखों में तकलीफ़ों में पढ़ने की बजाय, परेशानियों में पढ़ने की बजाय, अपने आप को इस बात पे तैयार कीजिए कि मालिक तू जिस हाल में रखेगा मैं खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। आप इस तरह की खुद कलामियाँ करिए, फिर देखिए क्या होगा। आप देखेंगे कि अंबिया कराम पर बेशुमार मुसीबतें आईं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कई तकलीफ़ें उठाईं, हज़रत याकूब बेटे की जुदाई में आजमाए गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गुर्बत और उसरत की ज़िंदगी बसर की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और उसकी कौम ने ईज़ा पहुँचाई, बल्कि हज़रत मूसा की अपनी कौम ने बहुत सताया, और हमारे प्यारे नबी का तो फ़क्र व फ़ाका का ही सामना रहा। अल्लाह के नबी ने सच फरमाया, ये रिवायत सही मुस्लिम 7417 में, कि अबू हुरैरा की रिवायत है कि दुनिया कैद खाना है मोमिन के लिए। इस तरह सिलसिले सहीहा की रिवायत है, दुनिया की लज्जत आखरत की कड़वाहट है, और दुनिया की तलखी आखरत की लज्जत और शीरी है, मिठास है। जैद बिन साबित से रिवायत है कि कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसका मकसद दुनिया हो, अल्लाह इस पर इसके मामलात मुतफरिक कर देता है, इसकी आंखों के सामने फ़क्र रख देता है, दुनिया से इसे वही मिलता है जो मुकद्दर में होता है, जिसकी नीयत आखरत हो अल्लाह इसके मामलात यकजा कर देता है, इसको दिल का गिना हासिल होता है, दुनिया इसके पास मजबूर होकर आती है। अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अपनी तमाम फ़िक्रें आखरत के लिए कर ले, हाईलाइट करें, हमें फ़िक्र है लेकिन सारी नहीं, तमाम के लफ्ज़ को सोचिए, कुल ऑल एवरीथिंग 100% फ़िक्र आखरत को बना ले, अल्लाह इसे दुनिया की फ़िक्र से निजात देगा, और दुनिया के अहवाल में जिसकी फ़िक्रें जमा हो गई, मुर्तकिस हो गई, कंसंट्रेट हो गई, तो अल्लाह को क्या परवाह के किस वादी में वो हलाक होगा। इसको लिख लीजिए, ये बात बड़ी सच्ची है, जो फ़िक्रे आखरत रखेगा अल्लाह उसको दुनिया की फ़िक्र से बचाएगा। हमें इल्म है जन्नत है जहन्नुम है, क़यामत आनी है, सूर फूंका जाना है, सबको इल्म है, शुरू से सुनते आए, बचपन से ये बातें कान में रहीं, लेकिन वो फ़िक्र नहीं है। अगर फ़िक्र होती तो बताइए कितने लोगों को बताया कि फ़जर की नमाज़ मस्त है, फिर उसके बाद कितने लोग हैं जो फ़जर के लिए उठ के जाते हैं मस्जिद में। बस इल्म है हमें अभी, वी नो दिस बट वी डोंट बिलीव ऑन दिस। यही तो कौमों की गलत फहमियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। तो कहिए कि मैंने अपने इल्म आखरत को फ़िक्र आखरत में बदलना है, ढाल लीजिए इसमें, आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा। मसलन वॉशरूम से आवाज़ आती है कि उबलता हुआ पानी आ रहा है, आपको घबराहट तो होगी कि ये क्या हो गया, कुछ करेंगे जोड़ तोड़, लेकिन अगर आप ख़ुद वॉशरूम में गए, टैप खोला और हसबे मामूल सर नीचे डाल दिया और उबलता पानी सर पे गिर गया, तो चीख निकलेगी ना। बस वो पहला इल्म था कि पानी उबल रहा है, ये हकीकत है, ये फ़िक्र है। तो अल्लाह हमें आखरत की ऐसे फ़िक्र लगा दे जैसे कि हमें अपने दुनिया के छोटे छोटे गमों की फ़िक्रें सता रही हैं। फिर इसी तरह से वहशियों के तरीके छोड़ दो, सब्र की पनाह लो, खुश रहोगे। ये वहशियों के तरीके कौन से हैं? एनिमल इंस्टिंक्ट्स, ईट ड्रिंक बी मैरी, उसका जुलेना छीना छपटी खाना दबकना, ये वहशी करते हैं, इंसान ये नहीं करते। थोड़ा सब्र तो कीजिए, आप क्यों छोटी छोटी बातों पे परेशान हैं? खुश रहोगे क्योंकि तारीकियां भी छट जाएंगी, बग़ैर शुक्र के तुम रवादारी बरतते हो और बग़ैर हरज के तुम हमें रोकते हो, अल्लाह का लुत्फ़ आ जाता है तो मौजें छट जाती हैं, वो तंगी से फराखी और गम से खुशी लाता है। तो क्या पता चला कि हमें आखरत का फ़िक्र लगाना है? करके तो देखिए, एक हफ़्ता, एक महीना,